मंत्रिमंडल, वेदों में मंत्रिमंडल के लिए समिति शब्द का प्रयोग है। कौटिल्य ने इसके लिए मंत्रिपरिषद शब्द का प्रयोग किया है और उसमें मंत्रियों की संख्या 12 बताई है। राजकृतः, रत्नी, वेदों और ब्राह्मणों ग्रंथों में राज्य संचालकों या राजा के सहायकों के लिए राजकृत और रत्नी शब्द है। शतपथ ब्राह्मण ने इनकी संख्या 11 बताई है। एकादश रत्नानि, इनको दो भागों में बांटा गया है। क राजानो राजकृतः, ख अराजानो राजकृतः, क राज परिवार से संबद्ध, एक राजन्य, दो महिषी अथवा महारानी, ख राज परिवार से असंबद्ध, एक ब्राह्मण या पुरोहित, दो सेनानी अथवा सेनापति, तीन ग्रामणी अथवा वैश्य। शतपथ का कथन है, वैश्यो वै ग्रामणी, साधारणतया ग्रामणी पद पर वैश्य की नियुक्ति होती थी। चार सूत, राजकीय इतिवृत्ति का लेखक। पाँच छत्ता, आय व्यय अधिकारी। छह संग्रहिता, कोषाध्यक्ष। सात भाग दूध, राजस्व अधिकारी। आठ अक्षावाप, आय व्यय निरीक्षक। नौ गोविकर्त, अरण्यपाल। दस पालागल, विशिष्ट संदेशवाहक। इनमें पुरोहित ब्राह्मण वर्ग का, राजन्य क्षत्रिय वर्ग का, महिषी स्त्री वर्ग का, ग्रामणी वैश्य का, पालागल शूद्र वर्ग का, सेनानी सैनिकों का, संग्रहिता और भाग दूध व्यापारियों का, अक्षावाप वित्त विभाग का, गोविकर्त भू संरक्षकों का, तक्षा और रथकार शिल्पियों का प्रतिनिधित्व करते थे। इसे ज्ञात होता है कि सभी वर्गों का राज्य संचालन में प्रतिनिधित्व होता था। मंत्रिमंडल में कितने सदस्य हों, इस विषय पर मनु, महाभारत, कौटिल्य अर्थशास्त्र और शुक्र नीति आदि में बहुत विस्तृत विचार किया गया है। मंत्रियों की संख्या 8 से लेकर 37 तक बताई गई है। कौटिल्य ने अपना मत दिया है कि आवश्यकता अनुसार इनकी संख्या निर्धारित की जाए। महाभारत के अनुसार मंत्रिपरिषद में चारों वर्णों का प्रतिनिधित्व अनिवार्य है। इनकी संख्या 37 होने पर इतने मंत्री इस वर्ण के लिए जाए, ब्राह्मण 4, क्षत्रिय 8, वैश्य 21, शूद्र 3, सूत। इसे स्पष्ट है कि अर्थव्यवस्था को ठीक रखने के लिए वित्त विशेषज्ञ सबसे अधिक हो। यदि राष्ट्र की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ है तो उसका सर्वांगीण विकास समुचित ढंग से हो सकेगा। 9 सभा और समिति। सभा का स्वरूप, अथर्वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। इसका अभिप्राय यह है कि राजा की सभा और समिति की स्थापना करता है। दोनों के स्वरूप में अंतर है। सभा छोटी इकाई है परंतु इसका स्वरूप व्यापक है। यह ग्राम सभा से लेकर केंद्रीय सभा तक होती है। मंत्र में संविधाने शब्द का प्रयोग, इसका अर्थ है परस्पर संबद्ध, परस्पर संज्ञान वाली। इसका अभिप्राय यह है कि ये दोनों एक दूसरे की पूरक हैं। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि इन दोनों की स्वतंत्र सत्ता है। दोनों ही लोकहित और नृपहित का कार्य संपादन करती थी। मंत्र में सभा के सदस्यों को पितरह अथवा पिता कहा गया है। इसे ज्ञात होता है कि सभा के सदस्य अनुभवी और वृद्ध व्यक्ति होते थे। सभा में वक्तृत्व कला को बहुत महत्व दिया जाता था। उत्तम वक्ता सभा को अपने ओजस्वी भाषण से प्रभावित करता था और अपने अनुकूल वातावरण तैयार करता था। सभा च मा समितिश्चावताम प्रजापतेर दुहितरौ संविधाने एना संगच्छ उपमा च शिक्षात चारुवदानि पितरः संगतेषु। सभा के सदस्य को सभ्य, सभेय और सभासद कहते थे। ये तीनों शब्द सभा के सदस्य के लिए प्रचलित थे। सभा के अध्यक्ष के लिए सभापति शब्द है। सभा में अपने विचार व्यक्त करने की पूर्ण स्वतंत्रता थी। अथर्वेद के सवाचक शब्द से ज्ञात होता है कि विचार विनिमय के बाद एक मत या एक राय स्थापित की जाती थी। सभा का मुख्य कार्य था न्याय की ठीक व्यवस्था करना, विवादग्रस्त सभी विषयों को निपटाना और उन पर अपना अंतिम निर्णय देना। सभा का निर्णय अंतिम माना जाता था, इसका कोई उल्लंघन नहीं कर सकता था। अथर्वेद में सबको नरिष्ठा कहा गया है। सायण ने नरिष्ठा की व्याख्या की है, न धन रिष्ठा अर्थात जिसके निर्णयों को कोई टाल न सके। इससे ज्ञात होता है कि न्याय के मामले में सभा सर्वोच्च संस्था थी। समिति का स्वरूप, समिति राष्ट्रीय स्तर की महासभा थी। इसमें राष्ट्र के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व होता था और इसमें सार्वजनिक जीवन से संबद्ध सभी महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विनिमय होता था। इसका कार्यक्षेत्र न्याय विधान तक ही सीमित न होकर पूरे राष्ट्र की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आदि सभी व्यवस्थाओं से संबद्ध था।